नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व। महाकाल तथा चुल्लकाल। शुभानुपस्यं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंभूतं भोजनं हि चामत्तयं कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं व दुर्बलं। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। अशुभानुपस्यम विहरंतम इंद्रियेषि सुसंभूतम भोजनम हि च मत्तयो सद्धम आरध वीर्यम तम वे नप सहति मारो वातो शीलंग व पपतम। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। धम्मपद गाथा 7 और 8। ये पंक्तियां चुल्लकाल एवं महाकाल के संबंध में भगवान बुद्ध द्वारा दी गई थी। व्यापार के लिए यात्रा पर जाते हुए इन दो भाइयों ने शिष्यों को बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जाते हुए देखा। महाकाल ने अपने छोटे भाई से कहा, बैलगाड़ियों का ख्याल रखना, मैं जाकर प्रवचन सुनूंगा, तथा वे वहां जाकर सभा के चरम किनारे पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने महाकाल की मानसिक प्रवृत्ति के अनुकूल क्रमानुसार एक प्रवचन दिया। उन्होंने ऐन्द्रिक इच्छाओं के खतरों को विभिन्न प्रकार से बताया। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध प्रवचन देते थे तो उनकी आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई पड़ती थी, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न बैठे हों, तथा प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि वह प्रवचन व्यक्तिगत रूप से उसी को संबोधित किया गया था। महाकाल ने प्रवचन से प्रेरित होकर एक भिक्षु बन जाने का निर्णय लिया। अतः उन्होंने अपने भाई से अनुमति मांगी, किंतु भाई ने भिक्षु न बनने के लिए विनती की, परंतु वह उन्हें रोक नहीं पाया और महाकाल एक भिक्षु बन गए। फिर चुल्लकाल ने भी भिक्षु बनने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि वह अपने भाई से किसी भी प्रकार संघ त्याग करवा देगा। बाद में महाकाल ने उपसंपदा प्राप्त की और बुद्ध से पूछा कि धम्म के पालन के कितने तरीके हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि चाहे तो कोई धम्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, तथा चाहे तो कोई अंतर्दृष्टि ध्यान की साधना कर सकता है। तो महाकाल ने कहा, महाप्रभु, मैंने अपनी वृद्धावस्था में उपसंपदा ली है, अतः मैं ग्रंथों के अध्ययन में निपुण बनने में सक्षम नहीं हो सकूंगा। मैं अंतर्दृष्टि ध्यान की साधना करूंगा। भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त 40 पद्धतियों में से एक उनको दिया गया। उन्हें श्मशान में तपस्वियों की साधना करनी थी। सभी के सो जाने के बाद वे श्मशान को जाते तथा किसी के उठने के पहले ही प्रातः वापस आ जाते। वहाँ काली नाम की एक महिला थी जिसका काम शवों का दाह संस्कार करना था। उसको लगा कि कोई वहाँ श्मशान में आकर बैठता है तथा एक स्थान पर चलता है, अतः इसका पता लगाने के लिए कि वहाँ कौन आता है उसने एक रात पहरा दिया। अर्धरात्रि में महाकाल को आते देखकर वह उनके पास गई तथा उनका अभिवादन किया। उसने उनसे कहा, महोदय, जो लोग श्मशान में रहते हैं उन्हें स्वयं को नियमों से परिचित कराना चाहिए। आदरणीय महाकाल ने यह नहीं कहा, तुम्हारे नियमों का पालन करने वाला मैं कौन होता हूँ, क्योंकि वे एक अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। बजाय इसके उन्होंने पूछा, भक्त, मुझे क्या करना चाहिए? काली ने उन्हें समझाया कि उन्हें विहार के वरिष्ठ स्थविर को, गांव के मुखिया को तथा श्मशान के रखवाले को सूचित करना चाहिए, नहीं तो यदि चोर चोरी का माल श्मशान में फेंक दें तथा चोरों का पीछा करते हुए लोगों को वे सामान मिल जाए तो भिक्षु के लिए कठिनाई होगी। यदि इसका पता हो कि वे वहाँ रह रहे हैं तो कोई भी उन पर एक चोर होने का संदेह नहीं करेगा। महाकाल ने पूछा, मुझसे और क्या करने की अपेक्षा है? उसने उनको मांस, मछली, आटा, तेल, शीरा इत्यादि से बचने के लिए कहा, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों की गंध से भूखे प्रेत आकर्षित हो सकते हैं। उन्हें दिन में सोना या आलस्य करना नहीं चाहिए, उन्हें अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। उनमें कोई भी कपटी तथा विश्वासघाती भावना नहीं होनी चाहिए, उनकी नीयत अच्छी रहनी चाहिए। जब सभी सो रहे हों तब उन्हें विहार छोड़कर जाना चाहिए तथा किसी के भी जागने के पहले वापस आ जाना चाहिए। और उसने कहा कि यदि श्मशान में कोई मृत शरीर आया तो वह उसके अवलोकन के लिए उन्हें बताएगी, इससे उनके ध्यान में सहायता होगी, क्योंकि यह श्मशान साधना का एक अंग है। एक दिन एक युवा महिला की मृत्यु हो गई तथा वह दाह संस्कार के लिए लाई गई। काली ने महाकाल को सूचित कर दिया। महाकाल ने उस युवती को देखा, उसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी तथा उसके शरीर का सुनहरा रंग अभी भी बरकरार था। उन्होंने काली से कहा कि जब वह मृत शरीर अग्नि पर रखा जाए तो वह उन्हें बताए। तो इस प्रकार उन्होंने शरीर के दाह होते समय अप्रिय परिवर्तनों का साक्षात्कार किया तथा उसका ध्यान के आलंबन के रूप में उपयोग कर उन्होंने अंतर्दृष्टि विकसित की एवं अरहत्व प्राप्त किया। उनके अरहत बनने के बाद जब भगवान बुद्ध उनके घर के शहर सिंसप्पा गए तो वे तथा उनके भाई भी भगवान के साथ गए। छोटे भाई चुल्लकाल की दोनों पत्नियों ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा होता था कि जब बुद्ध कहीं ऐसी जगह जाते थे जहां वे बहुधा न गए हों तो आसन तैयार करवाने के लिए पहले वे एक भिक्षु को भेजते थे। मध्य में भगवान बुद्ध के लिए आसन, उनके दाहिनी तरफ सारिपुत्र के लिए, बाईं तरफ मोग्गल्लान के लिए तथा अन्य भिक्षुओं के लिए दोनों ओर आसन तैयार किए जाते थे। इस कार्य के लिए महाकाल ने अपने छोटे भाई को भेजा। घर के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तथा आसनों को गलत तरीके से लगाया। उन लोगों ने वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए नीचा आसन तथा कनिष्ठ भिक्षुओं के लिए उच्च आसन तैयार किए। जब चुल्लकाल ने इसका विरोध किया तो महिलाओं ने उनकी अनसुनी कर दी। उन लोगों ने चुल्लकाल के चीवर खींचकर उतार दिया तथा उन्हें श्वेत वस्त्र एवं सर में फूलों की माला पहनाकर भेज दिया। जाओ शास्ता को ले आओ, हम आसन तैयार कर लेंगे। जो लोग एक लंबे समय तक के लिए भिक्षु नहीं हुए होते या जो एक वर्ष के पहले ही संघ का त्याग कर देते हैं उनमें इस विषय में शर्म का भाव नहीं होता, तो चुल्लकाल उसी वेशभूषा में बिना किसी उपहास के डर से चले गए। महाकाल की पत्नियों ने सोचा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे भी अपने पति को गृहस्थ बनने के लिए क्यों न मना लें, जैसा कि उनके भाई ने किया था। अतः उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि वे महाकाल को भोज का अनुमोदन करने के लिए पीछे छोड़ दें। बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा, और वे आगे चले गए। जब वे गांव के द्वार पर पहुंचे तो कुछ भिक्षुओं ने भुनभुनाना प्रारंभ किया। शास्ता ने यह क्या कर दिया? क्या उन्होंने यह जानबूझकर किया है अथवा अनजाने में? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि सीधे बुद्ध के साथ काम करने वाले भिक्षु भी संदेह में थे तथा कभी कभी वे उन विषयों की भी चिंता करते थे जो उनके प्रयोजन के नहीं थे। बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा कि क्या वे ऐसा सोचते हैं कि महाकाल अपने भाई चुल्लकाल की तरह है? उन्होंने उत्तर दिया हाँ भंते, चुल्लकाल की 2 पत्नियां हैं, महाकाल की 8 पत्नियां थीं। यदि वे उनकी पकड़ में आ गए तब वे क्या कर पाएंगे? बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि चुल्लकाल ध्यान लगाने के पश्चात कामुक सुख के विचारों में लिप्त होता था, जबकि महाकाल अप्रिय वस्तुओं के विषय में सोचते थे। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा वह तो ठोस चट्टानों के एक पर्वत की तरह अटल है, तथा उन्होंने इस कथा के प्रारंभ में दी गई गाथाओं को सुनाया। सुभानुपस्सिम विहरंतम इंद्रियेषु असंभूतम भोजनम ही चामत्तंगयु कुसीतम हीन वीरियम तम वे पसहति मारो वातो रुखम दुब्बलम। अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। अशुभानुपस्यम विहरंतम इंद्रियेषु सुसंभूतम भोजनम ही च मत्तंगयु सद्धम आरद्ध वीर्यम तम वे न पसहति मारो वातो सेलंग पब्बतम। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योग रथ को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। महाकाल की पूर्व पत्नियों ने उन्हें घेर लिया और बोली आपको भिक्षु बनने की अनुमति किसने दी? अब आप पुनः गृहस्थ बन जाएंगे, तथा वे उनके चीवर खींचने का प्रयास करने लगी। किंतु महाकाल अपनी शक्तियों का उपयोग कर हवा में उड़कर घर के एक कोने को भेदते हुए आकाश मार्ग से गए, जब भगवान बुद्ध गाथाओं का समापन कर रहे थे, तथा उन्होंने नीचे उतरकर तथागत का अभिवादन किया। 5 निवरण। आज प्रातः हमने 5 निवरणों की चर्चा की। 1 कामच्छंद, 2 व्यापाद अर्थात दुर्भावना, 3 स्त्यान एवं मिद्ध पाली में थीन मिद्ध, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक आलस्य या अकर्मण्यता। चार, औद्धत्य एवं कौकृत्य, पाली में उद्धच्च कुकुच्च अर्थात अनवस्थिता और खेद। तथा अंत में पांच, विचिकित्सा, पाली में विचिकित्सा अर्थात आशंका अथवा संदेह। आइए अब हम इसे थोड़ा और विस्तार से जानें कि वे कैसे उत्पन्न होते हैं तथा किस प्रकार से इन्हें हम दूर कर सकते हैं। एक, कामच्छंद। भगवान बुद्ध ने कहा है, सुंदर वस्तुएं होती हैं, उन पर बहुधा मूर्खतापूर्ण ध्यान देना उन इंद्रिय सुखों की कामेच्छा का पोषण करता है जो अभी उदय नहीं हुई है, तथा उन कामेच्छाओं को प्रबल बनाता है जो पहले से ही उत्पन्न हो गई हैं। जैसा कि हम आदरणीय महाकाल की कथा में देख चुके हैं, अशुद्ध विषय वस्तुओं पर ध्यान लगाना विशेष रूप से भिक्षुओं के लिए उपयुक्त एक तकनीक है, जिसमें शरीर के घृणास्पद पहलू पर मनन होता है। प्रव्रज्या के समय भिक्षु या श्रामणेर, पाली में सामनेर, बनने वालों को उनका मुंडन करने से पहले आचार्य शरीर के पहले पांच घटकों पर ध्यान लगाना सिखाते हैं, जैसा कि पाली ग्रंथों में बताया गया है, अर्थात सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत तथा त्वचा। आकांक्षी को इस प्रकार विचार करना चाहिए, ये न मैं हूँ, न ये मेरा है, यह कोई प्राणी या आत्मा नहीं है, किंतु नश्वर या अनित्य, दुख का कारण तथा अनात्म है, पाली में अनिच्च, दुख एवं अनत्ता। बुद्ध के समय ऐसे सात वर्षीय सामनेर थे जिन्होंने अपने मुंडन के समय शरीर के 32 घटक भागों को परिलक्षित किया एवं अर्हत हो गए। आदरणीय दब मल्लपुत्र की जब पहली लट कटी तो वे स्रोत विजेता सोतापन्न हो गए। दूसरी लट कटने पर मात्र एक बार वापस आने वाले सकदागामी, पाली में सकदागामी। तीसरी लट पर कभी न लौटने वाले अनागामी, तथा चौथी लट कटने पर अरहत हो गए। आदरणीय संकिच जब 7 वर्ष के थे तो उनके एक संबंधी उन्हें आदरणीय सारिपुत्र के पास ले गए और सामनेर बनने के लिए कहा। स्थविर ने संकिच को शरीर के 5 अंगों पर ध्यान लगाना सिखाया, तथा जैसे ही उस तरह का उनके बालों से संपर्क हुआ उसी क्षण वे अरहत हो गए। आदरणीय चुल्ल सुमन तथा एक सामनेर ने जब कौशाम्बी के स्थविर तिस के अंतर्गत प्रव्रज्ञा ली तो वे भी मुंडन के समय ही अरहत हो गए। साधना शिविर तथा दैनिक जीवन दोनों में ज्ञानेंद्रिय द्वारों की चौकसी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगी। आदरणीय सारिपुत्र ने एक साथी भिक्षु को ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण के विषय में परामर्श दिया था। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी वस्तु की ओर देखते हैं तो आपको उसके समग्र रूप से या उसके विवरण से गुमराह नहीं होना चाहिए। ऐसा आवश्यक है क्योंकि यदि चक्षु संकाय अनियंत्रित है तो लोभ, दुख तथा बुरी एवं लाभहीन मनोदशाओं से अभिभूत हो जाएंगे। अतः आपको अपनी दृष्टि को नियंत्रित रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, तथा इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपको चक्षु द्वार पर एक द्वारपाल बैठा देना चाहिए। यही बात तब भी लागू होती है जब आप कोई ध्वनि सुनते हैं, कोई गंध सूंघते हैं, किसी स्वाद का स्वाद लेते हैं, तथा जब शरीर किसी स्पर्श गोचर वस्तु के संपर्क में आता है, आपको प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रित करने पर काम करना है तथा उन पर द्वारपाल की स्थापना करना है। इस प्रकार आप उस पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। यह कैसे काम करता है, इसे भगवान बुद्ध ने आदरणीय मिगजाल को समझाया था। उन्होंने कहा कि ऐसी गोचर वस्तुएं हैं जिन्हें आँखों से देखा जा सकता है तथा जो सुंदर, मनमोहक, आनंददायक, वांछनीय एवं वासना उत्तेजित करने वाली होती हैं। यदि हम अपने आप को इस प्रकार की गोचर वस्तुओं से लालायित हो जाने दें, उनका स्वागत करें तथा उनसे चिपकें, तो वे हमारे लिए एक प्रलोभन बन जाएंगी। प्रलोभन से आसक्ति होगी, आसक्ति से बंधन होगा। उसी प्रकार ध्वनि, गंध, स्वाद तथा स्पर्श गोचर वस्तुएं भी हमें अपना दास बनाकर जकड़ सकती हैं। बुद्ध ने कहा है, इंद्रियों के बंधन में आयोजित हो जाना एक प्रेमी के साथ निवास करने जैसा है तथा यह प्रेमी है आसक्ति। किंतु यदि आप इन गोचर वस्तुओं से लालायित न हो, उनसे आनंदित न हो, उनसे चिपके नहीं, उनका स्वागत न करें, तो प्रलोभन कम होता जाएगा। प्रलोभन नहीं है तो आसक्ति नहीं होगी, यदि आसक्ति नहीं है तो बंधन नहीं होगा। अल्पाहार हमारे लिए समझना सहज है। हम शिविर में केवल शाकाहारी भोजन तथा सायंकाल में बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं के बराबर खाकर इसका अभ्यास करते हैं। यदि हम अपने ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे लिए आर्य मित्रता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक समय आदरणीय आनंद ने बुद्ध से कहा कि अच्छे मित्र, अच्छे साथी तथा अच्छी मित्रता की प्रवृत्ति आधा पवित्र जीवन है। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद ऐसा मत कहो, अच्छा मित्र, अच्छा साथी तथा अच्छी मित्रता की प्रवृत्ति आधा नहीं, पूरा पवित्र जीवन है। तब उन्होंने समझाया कि जब हमें धम्म सिखाने वाला हमारा कोई कल्याण मित्र होता है, तभी हम अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम हो पाते हैं। तथा बुद्ध ने कहा, चूंकि मैं उनका एक कल्याण मित्र हूं, जन्म के अधीन प्राणी जन्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने आदरणीय आनंद को दिए गए एक प्रवचन में उपयुक्त वार्तालाप के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस विषय में विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा है कि सही ढंग से धम्म का पालन करने वाला भिक्खु गलत प्रकार के भाषण से बचेगा। बुद्ध ने आनंद को दिए गए अपने एक प्रवचन में किसी भिक्खु के लिए उपयुक्त वार्तालाप का स्पष्टीकरण किया। ऐसा वार्तालाप जो सीधे साधे जीवन के विषय में हो, वार्तालाप जो मानस को खोलने में सहायता करे तथा जो त्याग की ओर, अनासक्त की ओर, कामुकता से मुक्त की ओर, निरोध की ओर, स्वजागृति की ओर, उच्च ज्ञान की ओर, शांति की ओर तथा निब्बान की ओर ले जाता हो। ऐसा वार्तालाप अल्पेच्छा के विषय में, संतोष के विषय में, एकाकी जीवन के विषय में, पुरुषार्थ के विषय में, पुण्य के विषय में, एकाग्रता के विषय में, सहज ज्ञान के विषय में, मुक्ति के विषय में तथा मुक्ति के ज्ञान एवं दर्शन के विषय में होगा। दो, व्यापार अर्थात द्वेष या दुर्भावना। आइए अब हम दूसरे निवारण द्वेष या दुर्भावना की चर्चा करते हैं। पाली ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रतिकूल वस्तुओं पर मूर्खतापूर्ण अत्यधिक ध्यान देने से द्वेष का पोषण होता है। यदि हम उनके विषय में सोचते रहें तो इससे द्वेष उत्पन्न होगा, तथा यदि द्वेष हमारे मन में पहले से ही है तो उसकी प्रबलता में वृद्धि होगी। द्वेष के पोषण को समाप्त करने का उपाय मेत्ता पर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रायः ध्यान देना है। यदि हम मेत्ता के विचारों का मनन करते हैं तो हम द्वेष को उत्पन्न होने से बचाएंगे, तथा यदि हममें पहले से ही द्वेष विद्यमान है तो उसका नाश करेंगे। 3. स्त्यान मृद, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक आलस्य। यदि हम ऊब, थकान, अंगड़ाई, भोजनोपरांत तंद्रा तथा मानसिक शिथिलता की ओर मूर्खतापूर्ण ध्यान दें तो उससे आलस्य एवं अकर्मण्यता के तीसरे निवारण का पोषण होगा। इन पर अत्यधिक विचार करने से आलस्य एवं अकर्मण्यता उत्पन्न होंगे, तथा उत्पन्न होने पर वे प्रबल होंगे एवं उनकी वृद्धि होगी। हम ऊर्जा जागृति तत्व पर, पुरुषार्थ के तत्व पर तथा निरंतर परिश्रम करने के तत्व पर प्रायः बुद्धिमत्ता पूर्ण ध्यान देकर आलस्य एवं अकर्मण्यता को समाप्त कर सकते हैं। इनका अभ्यास करने से आलस्य एवं अकर्मण्यता से बचेंगे, तथा उत्पन्न होने पर उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें आलस्य एवं अकर्मण्यता पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 बोध्यांगों, पाली में बोझांगों में से 3 का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब शारीरिक या मानसिक शिथिलता हो तो हमें प्रशांति, चित्त एकाग्रता या समभाव के विकास करने पर काम नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक चिंगारी को आग की ज्वाला बना देना चाहता है तो वह उस पर गीली घास, गीला गोबर तथा गीली लकड़ी का ढेर नहीं डालेगा। वह उसे तेज हवा और बारिश में नहीं ले जाएगा तथा उस पर धूल नहीं छिड़केगा। इसी प्रकार जब शिथिलता या आलस्य हो तो हमें ऐसे मानसिक संकायों का विकास नहीं करना चाहिए जो मन को प्रशांत करें। दूसरी ओर हमें उन 3 बोध्यांगों को उपजाना चाहिए जिनसे मन को उत्तेजित करने में आसानी हो। ये हैं धम्म का अन्वेषण, ऊर्जा तथा प्रीति अर्थात उल्लास या आनंद। ये उसी प्रकार प्रभावी होंगे जैसे जब कोई व्यक्ति एक चिंगारी को धधकती ज्वाला में बदलना चाहता है तो वह उस पर शुष्क घास, शुष्क गोबर तथा शुष्क टहनियां डालेगा, उसे धीरे धीरे हवा देगा तथा उस पर धूल का छिड़काव करने से परहेज करेगा। बोधि का 7वां अंग सती है। इसका विकास सदैव लाभकारी होता है। जब हम अंतर्दृष्टि के प्रशिक्षण में पहुंचेंगे तब हम 7 बोध्यांगों के विषय में अधिक विस्तार से बात करेंगे। 4. औद्धत्य कौकृत्य अर्थात अनवस्थितता एवं खेद। मन की व्याकुलता पर बारंबार मूर्खतापूर्ण ध्यान देना ही 4थे निवारण व्याकुलता एवं खेद की उत्पत्ति का पोषण करता है। यह उसकी वृद्धि करेगा तथा उसे प्रबल बनाएगा। हम शांत चित्त पर बारंबार ध्यान देकर व्याकुलता एवं खेद को समाप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन व्याकुल या उत्तेजित हो तो हमें 3 बोध्यांगों, धम्म का अन्वेषण, ऊर्जा एवं प्रीति अर्थात उल्लास को नहीं जगाना चाहिए। यह उसी प्रकार होगा जैसे धधकती आग बुझाने के लिए उस पर शुष्क घास, शुष्क गोबर तथा शुष्क टहनियों का ढेर डालना तथा धूल डालने के बजाय उसको हवा देना। जब हमारा मन व्याकुल या उत्तेजित हो तो हमें बोध के तीन अन्य अंगों प्रशांति, चित्त एकाग्रता एवं समभाव को जगाना चाहिए। यह उसी प्रकार होगा जैसे धधकती आग बुझाने के लिए उस पर भीगी घास, भीगा गोबर तथा भीगी टहनियों का ढेर एवं धूल डालना और उसे वर्षा से न बचाना। जैसा कि हमने आलस्य एवं अकर्मण्यता के साथ देखा, सती का विकास सदैव सहायक होगा। 5. विचिकित्सा, पाली में विचिकित्सा अर्थात संदेह। और निश्चितता या संदेह उकसाने वाली बातों पर लगातार मूर्खतापूर्ण ध्यान देने से 5वां निवारण संदेह उत्पन्न होगा, उसकी वृद्धि करेगा तथा उसे प्रबल बनाएगा। किंतु यदि अपना बुद्धिमत्तापूर्ण ध्यान हम बहुधा उन मनोदशाओं को समझने पर दें जो लाभप्रद तथा जो लाभहीन हैं, जो निंदनीय तथा जो निर्दोष हैं, जिन्हें विकसित करना चाहिए तथा जिन्हें विकसित नहीं करना चाहिए, जो निम्न एवं जो उच्च हैं, जो अंधेरी तथा जो उज्ज्वल हैं, तो हमें अपने संदेहों से छुटकारा मिल जाएगा। 5 निवरणों के परित्याग से लाभ। भगवान बुद्ध ने 5 निवरणों के परित्याग से होने वाले लाभों के विषय में बताया है। एक भिक्षु जिसने आर्य नैतिकता, इंद्रियों का आर्य संयम तथा आर्य संतोष अर्जित कर लिया है, वह कोई एकांतवास, कोई वन वृक्ष का मूल, कोई पर्वतीय गुफा या तंग घाटी, कोई श्मशान, कोई जंगली झुरमुट या खुली हवा में किसी पुआल के ढेर पर स्थान प्राप्त करता है। फिर भिक्षाटन से लौटकर भोजन करने के पश्चात शरीर को सीधा रखते हुए पालथी मारकर बैठता है तथा सती को अपने समक्ष स्थापित रखने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। सांसारिक इच्छाओं को त्यागते हुए वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त मन के साथ विहार करता है तथा उसका मन उनसे परिशुद्ध हो जाता है। द्वेष एवं घृणा को त्यागते हुए तथा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अनुकंपामय प्रेम विकसित करने से उसका मन द्वेष एवं घृणा से परिशुद्ध हो जाता है। आलस्य एवं अकर्मण्यता त्यागते हुए, प्रकाश गोचर करते हुए, स्पष्ट रूप से सतयुक्त एवं अवगत उसका मन आलस्य एवं अकर्मण्यता से परिशुद्ध हो जाता है। व्याकुलता एवं खेद त्यागते हुए तथा अंतर्मुखी प्रशांत चित्त के साथ उसका मन व्याकुलता एवं खेद से परिशुद्ध हो जाता है। संदेह त्यागते हुए हितकारी वस्तुओं के प्रति अनिश्चितता विहीन वह ऐसे रहता है जैसे संदेह पीछे छूट गया हो। इस प्रकार उसका मन संदेह से परिशुद्ध हो जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अपना व्यापार विकसित करने के लिए ऋण लेता है। उसका व्यवसाय सफल होता है तथा वह अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम हो जाता है। शेष धन के साथ वह एक पत्नी का भी पालन कर सकता है। तब वह सोचेगा, पहले मैंने उधार के धन से अपना व्यापार विकसित किया, अब यह चल निकला है, तथा वह आनंदित एवं आह्लादित होगा। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति रुग्ण हो, पीड़ित तथा सख्त बीमार हो, भूख मर गई हो, तथा शरीर दुर्बल हो गया हो। कुछ समय के बाद वह स्वास्थ्य लाभ करता है तथा उसकी भूख एवं शक्ति वापस आ जाती है। तब वह सोचेगा, इसके पहले मैं रोगी था किंतु अब मैं ठीक हूँ, तथा वह आनंदित एवं आह्लादित होगा। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति किसी कारागार में बंदी हो, कुछ समय के बाद मुक्त हो जाता है तथा वह अपनी सारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह सोचेगा, पहले मैं जेल में था किंतु अब मैं स्वतंत्र हूँ, तथा वह आनंदित एवं आह्लादित होगा। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति किसी का दास हो, वह स्वयं अपना स्वामी न हो किंतु किसी अन्य पर निर्भर हो, वह जहाँ चाहे जा न सके किंतु कुछ समय के बाद वह गुलामी से मुक्त हो जाता है तथा कहीं भी जहाँ भी चाहे वहाँ आ जा सकता है। तो वह सोचेगा, इसके पहले मैं एक दास था किंतु अब मैं स्वतंत्र हूँ, तथा वह आनंदित एवं आह्लादित होगा। यह उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति धन एवं संपत्ति से लदा हो, वह किसी रेगिस्तान से एक लंबी यात्रा पर निकलता है। मरुस्थल में भोजन प्राप्त करना दुर्लभ है तथा चारों ओर खतरा है। कुछ समय के बाद वह रेगिस्तान के दूसरे किनारे पर गांव के बाहरी भाग में सुरक्षित पहुंचता है। तो वह सोचेगा, पहले मैं असुरक्षित था किंतु अब मैं एक गांव के बाहरी भाग में सुरक्षित हूं, तथा वह आनंदित एवं आह्लादित होगा। जब तक एक भिक्षु स्वयं में पांचों निवरणों का समापन नहीं कर पाता, तब तक उसे लगता है कि वह रुग्ण कारावास में, दासता में या किसी मरुस्थल यात्रा पर है। किंतु जब वह पाता है कि उसमें से पांचों निवरण गायब हो गए हैं, तो उसे लगता है कि वह ऋण, रुग्णता, कारावास, दासता एवं मरुस्थल के संकटों से मुक्त हो गया है। तथा जब उसे पता चलता है कि वे पांचों निवरण उसमें से विदा हो गए हैं, तो उसमें हर्ष उदय होता है, हर्ष से उल्लास होता है, मन में उल्लास से उसका शरीर शांत हो जाता है, शांत शरीर से वह आनंद अनुभव करता है तथा आनंद से उसका ध्यान केंद्रित होता है। इस प्रकार राग से पृथक होकर अहितकारी मनोदशाओं से निस्संग वह प्रथम समाधि या ध्यान पाली में ध्यान में प्रवेश करता है तथा उसमें बना रहता है, तथा अनासक्त से उत्पन्न इस उल्लास एवं आनंद के साथ वह अपने शरीर को आप्लावित करता है, भिगोता है, भरता है, जगमगाता है, जिसके कारण शरीर का कोई भी अंग इस अनासक्ति द्वारा उत्पन्न उल्लास एवं आनंद से अछूता नहीं रहता, तथा वह अन्य ध्यानों को भी विकसित करने के लिए आगे बढ़ता है। आज संध्या केवल इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।